शिक्षार्थियों, आपका मुक्त विद्यावाणी के प्रोग्राम में फिर से एक बार स्वागत है। और जैसे कि हम बार बार जब भी फिजिक्स के लेसन्स में मैं आती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस कार्यक्रम का कोई लाभ नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सुनिए और पार्टिसिपेट करिए, आप अपना सवाल रखिए, तो ये इंटरेक्शन का ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे अभी बात हो रही थी कि इसमें आम इंसान कैसे जुड़ा हुआ है, या फिर आप पूछें तो हम ये टॉपिक क्यों पढ़ें, पहले तो यही है कि कोई भी टॉपिक है हम क्यों पढ़ें उसको। तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वर्ड सारे सुनते ही हमारे दिमाग में पहला जो वर्ड आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी, जो हर कोई जानता है, समझता है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब। और हर किसी के लाइफ में आज के दिन अगर हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है। अगर आपको एक दिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के जीने के लिए बोलें तो कितनी सारी परेशानियां आ जाएंगी अगर आप लिस्ट आउट करें तो। क्योंकि आज हम सुबह से उठते ही जो चीज़ हम यूज करते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आपके घर में जितने भी मशीन्स हैं आप देख लीजिए, सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो हम इसके बिना तो आज के ज़माने में जी ही नहीं सकते। दिल्ली में तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट चली जाती है तो घर में अंधेरा हो जाता है, तो दिन के टाइम में भी, क्योंकि यहाँ रोशनी नहीं होती, तो हमें दिन के टाइम में भी बल्ब के लिए एटलीस्ट चाहिए। और ठंड के मौसम है तो गीजर चाहिए, ब्लोअर चाहिए, ठंड और गर्मी के मौसम में फ़ैन, एसी, ये सब चाहिए। और बाकी टेलीविज़न, ये वो, ट्रेन भी आजकल इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो इस हिसाब से हमें देखें तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़्यादा जानना, ये कैसे काम करता है, कैसे उत्पन्न कैसे हुआ, कैसे बिहेव करता है, तभी तो हम आज इतने आसानी से इसको कंट्रोल कर पाए हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और अपने सुविधा के लिए उसको यूज कर रहे हैं। जब हमें ये नहीं पता होगा कि वो कैसे बिहेव करती है, हम उसको कैसे कंट्रोल में लाएंगे, उसको कैसे यूज करेंगे। इसलिए हमें पहले ये पढ़ना होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे बिहेव करता है, हम इसको कैसे यूज में ला पाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, करंट जिसको कहते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज ही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे बिहेव करता है ये चैप्टर, इसके बाद जो चैप्टर आएगा आपका उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में। तो पहला हमारा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो ये भी आप नेचर में बहुत ज़्यादा देखते हैं। अभी मैं एग्जांपल्स जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे दूंगी तो आपको लगेगा हाँ हाँ हम तो ये डेली मतलब हमें ये अनुभव होता है, पर हमें ये नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रिसिटी ही है। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का चैप्टर एक्चुअली है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब स्टैटिक मतलब रेस्ट, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज। तो चार्ज जब रेस्ट में होता है तो कैसे बिहेव करता है और उसके क्या क्या बिहेवियर और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इस ब्रांच फिजिक्स के इसी ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हिच डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। जब रेस्ट में होता है तब भी कुछ बिहेवियर दिखाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, फोर्स क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एंड और उसके बारे में फिर अगर ज़्यादा चार्ज होते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, सिंगल चार्ज कैसे बिहेव करता है, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेसन तो बहुत लंबा है और टाइम बहुत कम है, जितना आज कर पाएंगे हम उतना ही डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में आप बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जो आपको हायर लेवल पे लेके जाता है एक्स्ट्रा आगे। अगर हायर लेवल में जाते हैं तो नेक्स्ट समझने के लिए फिज़िक्स आपको ये सब सहाय मतलब हेल्प करेगी। और कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब हम इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक में आते हैं, ये उसका बेस है। कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके आगे है आपका गॉस लॉ, पर हो सकता है हम और एक सेशन में आएंगे तो गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू में हम पहले देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज की जो हम बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैंने कहा कि दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या क्या बिहेवियर दिखाता है, वो जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। पर ये चार्ज होता क्या है, ये सवाल आम इंसान के मन में ये आएगा कि चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली ये वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से, और उसमें इलेक्ट्रॉन का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में है एम्बर। ये एक मटेरियल होता है जिसका नाम ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन है। तो वो ये बिहेवियर शो करता था, इलेक्ट्रिक चार्ज का बिहेवियर जो भी होता है वो शो कर रहा था, जिसके वजह से ये टोटल इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वर्ड वहीं से आया है। तो उन्होंने क्या देखा, वो एम्बर को जब हम रब करते हैं तो रब करने के बाद वो छोटे छोटे फीदर्स या जो बहुत लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फीदर या छोटे टुकड़े, पेपर के टुकड़े, उन सबको अट्रैक्ट कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये एक अजीब सी क्वालिटी है इसमें, और इस क्वालिटी को उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज के हिसाब से उन्होंने नोमेनक्लेचर करा। तो उसके बाद हम साइंटिस्ट ने और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, जैसे कि ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हैं या फिर आपने करा होगा कभी, कि हम जब एक कॉम्ब लेके, कंघी लेके अपने बाल को, ड्राई हेयर को कंघी कर लेते हैं, फिर छोटे छोटे टुकड़े पेपर के टुकड़े के पास लाते हैं तो वो उनको अट्रैक्ट करता है।
हाँ, बिल्कुल करेक्ट,
ये तो देखा ही होगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज कहीं मूव नहीं कर रहा है, आपके जो अपने ड्राई हेयर को कॉम्ब करा है तो उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, तो वो फिर न्यूट्रल जो आपके पेपर के टुकड़े हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एक क्वालिटी, उसमें प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। और भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, कि एक ग्लास रॉड ले लीजिए, एक रबर का रॉड ले लीजिए, फिर रबर रॉड को आप फॉर या उल में थोड़ा सा घिस लीजिए, फिर उसको सस्पेंड कर दीजिए। ग्लास रॉड को सिल्क कपड़े में रब करके उसको भी किसी थ्रेड से सस्पेंड करिए, फिर और एक रबर रॉड और एक ग्लास रॉड, रबर रॉड को उल में फिर रब करके, ग्लास रॉड को सिल्क में रब करके ले लीजिए। तो पहले रबर रॉड को रबर रॉड के पास अगर आप लाएंगे तो देखेंगे कि वो जो सस्पेंड करा है रबर रॉड वो उससे दूर हट जाएगा।
अच्छा,
इस वाले रबर रॉड से जो आपने पकड़ा है वो तो नहीं जा सकता क्योंकि आपने पकड़ रखा है, लेकिन वो जो दूसरा सस्पेंड किया है इट इज़ फ्री टू मूव, तो वो थोड़ा दूर चला जाएगा। और अगर वो ग्लास रॉड उसके पास लेके आएंगे, रबर रॉड के पास, तो वो उसके पास आने लगेगा। और अगर वैसे ही ग्लास रॉड के पास ग्लास रॉड लेके जाएंगे तो वो दूर भागेगा, और ग्लास रॉड के पास रबर रॉड लेके जाएंगे तो वो उसके पास आएगा। तो ये क्यों हो रहा है, इसमें से उन्होंने ये निकाला, उससे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया या फिर ये इन्फ्रेंस निकाला कि जो रबर रॉड है उसमें जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है और जो ग्लास रॉड में प्रोड्यूस हो रहा है वो दोनों अलग है, डिफरेंट है। और जो ग्लास रॉड में प्रोड्यूस हो रहा है और उसके पास ग्लास रॉड ला रहे हैं तो वो अट्रैक्ट कर, रिपेल कर रहा है, दूर भाग रहा है, इक्वल इक्वल, मतलब इक्वल इक्वल चार्ज। ग्लास रॉड में दोनों में तो एक ही टाइप के चार्ज होंगे,
बिल्कुल बिल्कुल,
तो इक्वल इक्वल चार्ज जब पास आ रहे हैं तो वो दूर भाग रहे हैं, और रबर रॉड और ग्लास रॉड पास आ रहे हैं और दोनों में ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्ज है, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स एंड सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल। तो ये दोनों इन्फ्रेंस वहाँ से निकला कि चार्ज दो टाइप के हैं, दोनों ऑपोजिट हैं, जो रबर रॉड में और ग्लास रॉड में हो रहा है वो अलग है, और जब इक्वल इक्वल चार्ज पास आते हैं तो वो रिपेल करते हैं, ऑन इक्वल चार्जेस जब आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने और भी ये खोज निकालने की कोशिश की कि ये दो ही टाइप के चार्ज होते हैं या और भी कुछ होते हैं, पर अभी तक ये नहीं निकाल पाए, अभी तक तो सिर्फ दो ही टाइप के चार्ज हैं और उनको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के हिसाब से साइंटिस्ट हमारे हैं फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ये नामित करा है, नोमेनक्लेचर करा है पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से, और तब से उसी हिसाब से ही चला आ रहा है, और जो ग्लास रॉड पे हुआ था उसको हम पॉजिटिव के हिसाब से लेते हैं, और जो रबर रॉड पे हुआ था उसको नेगेटिव चार्ज के हिसाब से, तभी से उस हिसाब से ही लिया जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये होता है हमारा फ्रिक्शनल, क्योंकि हम फ्रिक्शन रबिंग के थ्रू ये चार्ज एक्वायर करा है वो ऑब्जेक्ट। पहले जब आप ग्लास रॉड सिल्क में घिसने से पहले जब लिया था वो न्यूट्रल था, जैसे बाकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तब घिसने से पहले अगर आप लेकर आएंगे किसी ऑब्जेक्ट के पास तो वो नहीं अट्रैक्ट करेगा, घिसने के बाद ही क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा क्या हो गया, क्यों हुआ, ये तो बाद में देखेंगे। पहले ये है कि ये फ्रिक्शन के थ्रू हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और अभी उसी जो आपके ग्लास रॉड में चार्ज प्रोड्यूस हो गया है पॉजिटिव चार्ज, अब उसको किसी दूसरे रॉड के पास या दूसरे ऑब्जेक्ट के पास अगर लेकर जा रहे हैं तो उसमें भी चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में।
अच्छा,
हाँ, तो वो कैसे कर सकते हैं, आप अपना चार्ज पे लगाते हैं, मोबाइल वगैरह चार्ज पे लगाते हैं,
जी जी।
वैसे ही अगर आप उस ग्लास रॉड को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर टच करा देंगे तो थ्रू कंडक्शन वो चार्ज उसमें फ्लो हो जाएगी, ये तो टच करा के, दूर से भी आप उनको दे देंगे चार्ज, किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को एक चार्ज्ड बॉडी से आप दूर से भी दे सकते हैं, थोड़ा सा उनको पास ले आइए, बिल्कुल टच नहीं कराना है लेकिन पास ले आएंगे तो एक चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी में चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ट्रांसफ़र होता है, जिसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन, और जहाँ टच करा के हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको कहते हैं कंडक्शन। तो ऐसे दो तरीके से आप चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि ये चार्ज क्यों प्रोड्यूस होता है, पहले तो न्यूट्रल होता है जब घिस देते हैं तो क्यों चार्ज प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो वस्तुएं होती हैं ये अपने साइंस में बहुत पढ़ा है कि सारे ऑब्जेक्ट्स एटम से बनी है और एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स होता है आपके बाहरी लेयर्स में होते हैं सेल्स में, और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो जब हम घिस देते हैं जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आप दो चीज़ों को घिस रहे हैं, एक है सपोज़ फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं ग्लास रॉड एंड सिल्क, तो जब सिल्क के साथ इसको घिस रहे हैं तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि ग्लास रॉड से थोड़े से इलेक्ट्रॉन सिल्क कपड़े में चले जाते हैं, आउटर लेयर के उसके एटम से थोड़े से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो क्योंकि पहले वो न्यूट्रल था, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स, लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है, इसलिए वो पॉजिटिव लग रहा है हमें। और सिल्क कपड़े में क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन्स के नंबर तो उतने ही हैं, बस इलेक्ट्रॉन थोड़े से ज़्यादा आ गए हैं, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज से, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव है। तो ऐसे है कि वो चार्ज एक्वायर करते हैं, कहीं बाहर से उनमें चार्ज नहीं आ जाता,
जैसे आप
हाँ रब करने से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से वो बोथ तो आपका सिल्क और जो ग्लास रॉड जैसे वो दोनों चार्ज एक्वायर करते हैं, एक से दूसरे में चला जाता है बस। तो ऐसे ही तो यहाँ पे हम और एक लॉ कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज जैसे हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, सिमिलरली वी कैन से दैट चार्ज कैन नाइदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कहीं से प्रोड्यूस नहीं होता, एक से दूसरे में वो ट्रांसफ़र ही होते रहते हैं। तो चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, दैट मीन्स जितने चार्ज जितने पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड में प्रोड्यूस जितना पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है उतने ही नेगेटिव चार्ज सिल्क में उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, मतलब इसमें जितना पॉजिटिव उसमें उतना ही नेगेटिव, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो टोटल अगर सिस्टम के हिसाब से लो तो वो फिर जीरो हो जाएगा। तो ऐसे ही चार्ज कंजर्व रहता है। तो किसी भी आप पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे रबर रॉड और हम बात कर रहे थे उल की, उसमें भी ऐसे ही जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज कभी प्रोड्यूस नहीं होता ना ही ये डिस्ट्रॉय होता है, टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। दूसरी बात जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के हम बात कर रहे हैं, पहले तो कॉन्जर्व होता है, टोटल चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स रिमेंस कांस्टेंट, और दूसरी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, क्वांटा का मतलब होता है एक हिसाब से आप समझ लो एक पैकेट। जैसे आपका पहले एग्जांपल हम लेते हैं, एक शैम्पू का बॉटल होता है उसमें सपोज आपका 200 ml आता है और आप पैकेट पाउच में भी ख़रीद के लाते हैं तो उसमें एक पाउच में सपोज 10 ml है लेकिन आपको चाहिए 15 ml, तो आप क्या करेंगे? दुकानदार आपको 5 ml अलग से नहीं देगा, तो आपको दो पाउच खरीदने पड़ेंगे 10 ml 10 ml वाली। ऐसे ही होता है चार्ज की क्वांटाइजेशन, हर पार्टिकल में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा या फिर उसके इंटीग्रल न्यूमेरिकल इंटीग्रल में ही रहेगा। जैसे उसका एक क्वांटा जो होता है उसको हम कहते हैं इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इतना चार्ज रहेगा, या फिर 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ या फिर 3 × 1.6 × 10⁻¹⁹। मतलब आप समझ लीजिए एक पाउच में आपका 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है, तो आपको उसका डबल, उसका ट्रिपल, इंटू 4 × 5 ऐसे ही हो सकता है। किसी भी पार्टिकल, किसी पार्टिकल का चार्ज ऐसे ही आएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ × n, फॉर n इज एन इंटीगर, तो ऐसे ही आएगा, किसी बीचों बीच के चार्ज आप नहीं मिल सकता। तो ये होता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमने दो प्रॉपर्टी देखा कि चार्ज इज कंजर्व्ड एंड चार्ज इज क्वांटाइज, और दूसरी चीज़ ये है कि चार्ज सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये तो हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि पूरा चैप्टर चार्ज के ऊपर बेस्ड है, तो हमने पहले चार्ज क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं ये देख लिया। अब हम आते हैं इनके प्रॉपर्टीज़, जो कैसे ये बिहेव करता है। तो पहले बात हमने जैसे कहा कि वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ग्लास रोड रबर रोड को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते जो हैं वो कितना अट्रैक्ट करेंगे और किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, ये सब हम देखेंगे कूलम्स लॉ में। कूलम्स लॉ एक्चुअली है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल, दो चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में फोर्स के ऊपर ये लॉ है। एंड दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ़ टू चार्जेस, टू स्टैटिक चार्जेस एंड दैट ऑल्सो पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस हम यहाँ पे इस चैप्टर में हमेशा आप देखोगे किताब में आपका पॉइंट चार्ज लिखा हुआ होता है, जिसका आपको कहीं भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो ये है कि पॉइंट चार्ज जब हम लेते हैं, आप सोच लो कि उसका जो डायमेंशन है एक छोटे से पॉइंट के बराबर होना चाहिए। जब हम पॉइंट से बड़ा लेंगे तो क्या दिक्कत होगी? क्योंकि जब हम एक्सटेंडेड बॉडीज़ ले लेते हैं तो उसके डायमेंशन और चार्ज डेंसिटी फिर अलग हो जाती है, जिसको फिर हम डील करेंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हो जाएंगे आपके लिए। तो यहाँ पे हम सिंपल से शुरू करते हैं, तो इसलिए हम पॉइंट चार्ज लेते हैं। तो आप दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2 ले लीजिए एंड सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज आर, वो आर डिस्टेंस में सेपरेटेड होके रखा हुआ है। देन द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी द फोर्स बिटवीन द चार्जेस Q1 एंड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, दैट मीन्स F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, उनके बीच में सपोज डिस्टेंस आर है तो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का मतलब है एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r². एंड थर्ड इट इज़ डायरेक्टेड अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज पार्टिकल, दोनों चार्ज पार्टिकल को आप ज्वाइन कर लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगी और दैट फोर्स विल एक्ट अलॉन्ग दैट स्ट्रेट लाइन, उसी स्ट्रेट लाइन में ही एक्ट करेगी। चौथी बात यह है कि कि अगर आपने दोनों चार्ज जो लिया है क्यू वन क्यू टू वो सेम चार्ज है तो फोर्स विल बी रिपल्सिव, और अगर ऑपोजिट चार्ज है तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। तो यहाँ जैसे हमने कहा कि एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू एंड एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर, सो वी कैन राइट एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, आप अपनी किताब सामने रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 पे आपका ये डेरिवेशन है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाते हैं तो वहाँ पे इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, पर के इज़ दी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये के का वैल्यू अलग अलग होता है फॉर फ्री स्पेस, जहाँ वैक्यूम में या एयर में हम लेते हैं वहाँ पे एफ इक्वल टू के की जगह पे हम लेंगे 1/4πε0। 1/4πε0 इज़ द वैल्यू ऑफ के इन फ्री स्पेस इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, एंड के इक्वल टू 4πε फॉर एनी मीडियम, मटेरियल मीडियम है, सपोज आपका वाटर है, ग्लास है, कुछ भी मटेरियल मीडियम, जो मीडियम किसके बीच में हम बात कर रहे हैं, जो Q1 Q2 के बीच में, जो दो चार्ज आपने लिया है उनके बीच में क्या मीडियम है, तो अगर वो कोई मटेरियल मीडियम है तो वहाँ पे आपका K का वैल्यू चेंज हो जाएगा, वो होगा 1/4πε। एंड व्हाट इज दिस एप्साइलन नॉट, एप्साइलन क्या है, जहाँ पे भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे कोई नया सिंबल साइन आ रहा है वो क्या है ये पहले सोचिए। यहाँ पे आपका ये एप्साइलन एप्साइलन नॉट आपके लिए ये पहली बार आ रहा है, ये है एप्साइलन नॉट को कहते हैं हम परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, उस मीडियम इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को कितना परमिट करता है, ये तो एक कॉन्सेप्ट है जो आप आगे फर्दर पढ़ोगे। तो यहाँ के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि ये परमिटिविटी होती है, और अगर फ्री स्पेस है चार्ज द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, फ्री स्पेस मीडियम है ही नहीं, तो वहाँ पे आपका परमिटिविटी हम लेते हैं एप्साइलन नॉट, और अगर कोई मटेरियल मीडियम है तो वहाँ पे हम परमिटिविटी लेते हैं एप्साइलन, तो उस एप्साइलन को कहेंगे हम परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मटेरियल मीडियम में आपने रखा है सिस्टम को तो वो फ्री स्पेस में रखोगे तो फोर्स विल बी डिफरेंट, तो आप सोच सकते हैं कि उसी सिस्टम को, उसी दो चार्ज को फ्री स्पेस में रखोगे तो वो जितने फोर्स में इंटरेक्ट करेंगे, अगर किसी मटेरियल मीडियम में ले आओगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अलग हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड फ्री स्पेस। और ये कांस्टेंट के जो है इसका वैल्यू आपके सिस्टम ऑफ यूनिट आप क्या चूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कि आपका एसआई सिस्टम में वैल्यू ऑफ के है आपका 1/4πε0 इक्वल टू 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका यूनिट भी आप फोर्स आपका जो कूलम लॉ का इक्वेशन है एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर वहाँ से निकाल सकते हैं, के इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय क्यू वन क्यू टू, तो एफ का हो गया न्यूटन, आर का मीटर है तो एफ आर स्क्वायर का न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू वन क्यू टू, क्यू चार्ज का होता है आपका कूलम, तो आपका K का यूनिट हो गया SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और उसका वैल्यू है 9×10⁻⁹ इन SI यूनिट। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कूलम्स लॉ क्या होता है, वो किस डायरेक्शन में फोर्स, क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमने मैग्नीट्यूड बताया एफ इक्वल टू क्यू वन के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। उसके बाद हमने क्यू का क्या यूनिट है, क्या वैल्यू होता है, ऐसा यूनिट में क्या वैल्यू होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो इस लॉ से ये सवाल आपका बहुत ज़्यादा आता है 1 मार्क 2 मार्क में कि हाउ कैन यू डिफाइन 1 कूलम फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ से आप डिफाइन करिए 1 कूलम को। तो यहाँ पे आप 1 कूलम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ 2 इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय वन मीटर एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 9×10⁹ न्यूटन, देन ईच चार्ज हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 1 कूलम, तब आप कहेंगे कि एक एक चार्ज पे 1 कूलम है। अगर दो चार्ज को आपने एक मीटर डिस्टेंस पे रखने के बाद उनके बीच में फोर्स 9×10⁻⁹ न्यूटन है, तब आप कहेंगे कि दोनों चार्ज के ऊपर 1 कूलम है। तो ये होता है आपका 1 कूलम का डेफिनेशन फ्रॉम कूलम्स लॉ। तो इसको अगर आप अपने जो पहले पढ़े हुए टॉपिक्स के साथ कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि ऐसा ही एक, बिल्कुल ऐसा ही एक लॉ आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें भी हम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1×m2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r2 ये कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं हम उसको, और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है और कूलम्स लॉ भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। कूलम्स लॉ में एक चीज़ आप देख सकते हैं जो मैंने पहले भी बताया, ये ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए सही बैठता है, अदरवाइज जब जहाँ हम हाई चार्जेस बॉडी लिखते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज है उसमें, इतना ज़्यादा होल्ड नहीं है। दूसरी, आपने हमेशा फोर्स जितना भी अभी तक पढ़ा है उसमें आप बाय कॉन्टैक्ट किसी बॉडी को आप अगर पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो उसमें आपको उसको पकड़ना होता है, या फिर कोई मशीन से आप उसको डंडे से उठा रहे हैं या मार रहे हैं तो उसमें आप कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। पर यहाँ पे आप देखेंगे कि दो चार्ज रखे हुए हैं, उसमें उनमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो कूलम्स फोर्स एक्ट्स एट ए डिस्टेंस अनलाइक मैकेनिकल फोर्स, ये आप कह सकते हैं। तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं मैकेनिकल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो अभी जैसे हम परमिटिविटी की बात कर रहे थे कि फ्री स्पेस में इतना होगा और मीडियम में इतना होगा, तो ये आपका बहुत बार सवाल आता है कि अगर उसी सिस्टम को हमने वैक्यूम में रखा है, इतना फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज दिस मच, एंड व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सेम टू चार्जेस व्हेन इट इज़ कैप्ट इन एन मीडियम, एक मीडियम में हमने रख दिया तो क्या चार्ज होगा, तो ये क्या फोर्स होगा, तो ये सवाल आपके बहुत आते हैं। तो इसको आप कैसे डील करेंगे, इसको आप ऐसे डील करेंगे कि फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, अगर हम रेशियो ले रहे हैं तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर आप 1/4 pi फोर्स इन वैक्यूम इज 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर, फोर्स इन मीडियम इज 1/4 pi एप्सिलॉन q1 q2 बाय आर स्क्वायर, तो आप उनका रेशियो लेंगे तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर, विच इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ये है रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और इसको हम ये भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको अगर क्वेश्चन ऐसा ला रहा है तो उसमें आपको दिया होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज दिस, तो आप ये वाले फॉर्मूला पुट करके आप फोर्स इन द मीडियम निकाल सकते हैं। तो हमने कूलम्स लॉ के तो डेफिनेशन और उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया, बिकॉज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप देख सकते हैं आपकी किताब में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि यहाँ F12, F के नीचे अगर हम सबस्क्रिप्ट 12 ले रहे हैं, देन इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, क्योंकि दो चार्ज जब आपने आसपास रखे हुए हैं तो Q1 के ऊपर भी कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, Q2 के ऊपर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो F12 को हम ले रहे हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 ड्यू टू 2, एंड F21 इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 ड्यू टू 1। तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो F12 इक्वल टू KQ1Q2 डिवाइडेड बाय R12 मैग्नीट्यूड स्क्वायर, R12 जो वेक्टर है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू R12 कैप। हियर R12 कैप इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, यहाँ पे उल्टा होगा Q2 टू Q1। तो वैसे ही आप F21 भी निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू -KQ1Q2 बाय R12 स्क्वायर डिवाइड इंटू R12 कैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर उसके डायरेक्शन देखेंगे, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, बट आप डायरेक्शन देखेंगे तो F12 जिस डायरेक्शन में है, F21 उसके ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पे ये नेगेटिव साइन लेकर आए हैं जो ये डिनोट करता है कि F12 एंड F21 आर इन ऑपोजिट डिरेक्शन. तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21. ये हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ था. तो यहाँ तो हम अभी दो चार्ज के बीच में क्या फोर्स होगा, कौन से डिरेक्शन होगा, ये सब निकाल रहे हैं. पर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे दो से भी ज़्यादा चार्ज है. तो ऐसा सिचुएशन अगर है तो वहाँ पे आपको कैसे फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालना है. तो वहाँ पे हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जहाँ पे मोर देन टू चार्जेस है वहाँ पे हम यूज कर रहे हैं. और वहाँ पे सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, एक एक पर्टिकुलर चार्ज जितने भी चार्ज हैं, टू है, थ्री मतलब टू से ज़्यादा है तो थ्री है, फोर है, फाइव है, तो थ्री चार्जेस सपोज ले लो. तो Q1 पे कितना चार्ज एग्जिट हो रहा है ड्यू टू Q2 एंड Q3, Q2 पे कितना चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, Q2 कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q3, Q3 कितना एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q2, ये सारा निकाल के इनका वेक्टर रिजल्टेंट निकालना है. क्योंकि फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में ही आपको सारा निकालना है, वेक्टर सम निकालना है. वेक्टर सम निकालेंगे तो आपको टोटल फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा. तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. जहाँ दो से ज़्यादा चार्ज है तो इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है आप निकाल लीजिए, देन यू टेक द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, देन यू कैन गेट द नेट रिजल्टेंट फोर्स. तो इसके ऊपर आपके सवाल भी आते हैं बहुत नॉर्मली, आपके थ्री चार्जेस या फोर चार्जेस में ही आता है. तो आप इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए, साथ ही साथ आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, अदरवाइज वो गलत हो जाता है. तो आप इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट हम देखेंगे कूलम्स लॉ के बाद व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी तक हम बात कर रहे थे फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे आपने फील्ड के बाद जहाँ आता है हमें एक स्पेस को ध्यान में रखना पड़ेगा. जैसे आप फुटबॉल फील्ड, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये हमारा फील्ड है और बॉल को इतने स्पेस के अंदर ही हमें खेलना है. ऐसे ही अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पे रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ जितने स्पेस में जितने एरिया में उसका फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. उस स्पेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसको हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे. अगर आपने एक चार्ज रखा है उसके चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे. तो व्हाट फोर्स द टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस एज द मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज इक्वल टू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, वेयर एफ इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज एंड क्यू नॉट इज द चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है उसको हम कह रहे हैं क्यू नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है आपका ई. जैसे हम ग्रेविटेशन में पढ़ रहे थे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी इक्वल टू एफ बाय एम जीरो, सिमिलरली हियर ऑल्सो ई इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट. दूसरी बात यह है कि आपका टेस्ट चार्ज क्या है. जो हम एक नया वर्ड ले आए टेस्ट चार्ज, टेस्ट मतलब आपको समझ आता है टेस्ट कर रहे हैं, किसी को एग्जामिन कर रहे हैं टेस्ट, एंड चार्ज. तो ये चार्ज को हम बस लेकर आते हैं टेस्ट करने के लिए कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. ये नहीं होना चाहिए कि ये चार्ज इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि ये जो पहले चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड को आप टेस्ट कर रहे हैं उसी को ही वो डिस्टर्ब कर दे या फिर इफ़ेक्ट डाले उसके ऊपर. तो हमेशा टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होना चाहिए. इसका रीज़न ये है कि जो चार्ज के हम इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना चाहते हैं उस चार्ज डेंसिटी को ये टेस्ट चार्ज कोई किसी भी तरह से इफ़ेक्ट ना करे या मॉडिफाई ना करे. इसलिए टेस्ट चार्ज को हम बहुत ही स्मॉल लेते हैं. इट इज़ शुड बी वेरी वेरी स्मॉल देन द एग्जिस्टिंग चार्ज जिसका आप टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट कर रहे हो या नाप रहे हो. सो ई इज इक्वल टू लिमिट क्यू जीरो टेंड्स टू ज़ीरो एफ बाय क्यू जीरो और लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू ज़ीरो एफ बाय क्यू नॉट. तो ये क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज हम ले रहे हैं ये बहुत ही स्मॉल होना चाहिए इन मैग्नीट्यूड. तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. इसका यूनिट क्या होगा? बिकॉज फोर्स का यूनिट आपका होता है न्यूटन एंड चार्ज का यूनिट होता है कूलम ऐसा यूनिट. तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा कूलम न्यूटन पर कूलम. एंड अनदर थिंग इज दैट आपका फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट ले रहे हैं. तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू द एग्जिस्टिंग चार्ज बाय द टेस्ट चार्ज इक्वल टू फोर्स इक्वल टू यहाँ पे आप लिख सकते हैं के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टेस्ट चार्ज एंड द सोर्स चार्ज. तो डिवाइडेड बाय क्यू नॉट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट. तो के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर. इसका डायरेक्शन भी फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो ए वैक्टर क्वान्टिटी. तो इसका डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा. अगर आप सोर्स चार्ज को पॉजिटिव ले रहे हैं जिसके आप इलेक्ट्रिक फील्ड नाप रहे हैं, अगर सोर्स चार्ज का चार्ज पॉजिटिव है देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट. एंड इफ द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट. अगर नेगेटिव है तो उसके तरफ होगा, अगर पॉजिटिव है तो उससे बाहर के तरफ होगा. और हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे भी लागू होता है. जैसे फोर्स के केस में हम निकाल रहे थे फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज निकाल के उसके बाद हम उसका वेक्टर सम ले रहे थे. इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो अगर मोर देन टू चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो वहाँ पे हम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज हम पहले फाइंड आउट करेंगे देन हम वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स लेंगे. तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस मिल जाएगा. तो हम जैसे एफ इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट ले रहे थे तो एफ को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई और क्यू नॉट इंटू ई. तो ऐसे हम फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज को रिलेट कर सकते हैं. आपकी किताब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से निकाला हुआ है एक्सप्रेशन ई इक्वल टू के समेशन ओवर आई इक्वल टू वन टू एन पेज नंबर आपका है 12. वहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिंबल है वो है समेशन सिंबल ई इक्वल टू के समेशन ऑफ समेशन फ्रॉम आई इक्वल टू वन टू एन. आई इक्वल टू वन टू एन का मतलब है जब हम इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस डट 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 लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम ई वन से शुरू करके ई एन तक ले रहे हैं. ये वन टू एन क्या है? ये जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आपने ले रखी है उन्हीं के नंबर हैं. तो के समेशन फ्रॉम आई इक्वल टू वन टू एन क्यू आई आर आई कैप डिवाइडेड बाई आर आई स्क्वायर. तो यहाँ पे i के जगह पे आप वही नंबर डालते जाइए. इफ़ i इक्वल टू वन देन इट विल बी q1 r1 कैप बाय r1 स्क्वायर. i इक्वल टू टू q2 r2 कैप डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर. ऐसे ही आप करते जाएंगे, ऐड करिए वेक्टर सम निकाल के आप पा सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द पॉइंट चार्जेस. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस हमने निकाल लिया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होता है? डाइपोल पहले तो ये समझना चाहिए कि डाइपोल होता क्या है. डाई मतलब टू, पोल मीन्स चार्ज को हम पोल कह रहे हैं यहाँ पे. तो जहाँ पे आपका टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस वो सिस्टम को हम कहते हैं एक डाइपोल. तो ये एक्चुअली आप कहाँ, आपको कहाँ मिलता है? जो हम मोलिकुलर स्ट्रक्चर देखते हैं, आपने केमिस्ट्री में भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, ये डाइपोल नॉन पोलर मोलिकुल, पोलर मोलिकुल, जहाँ पोलर मोलिकुल होता है वहाँ पे आपको डाइपोल मिल जाएगा। तो डाइपोल का मतलब है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है और दे आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। देन वो जो दो मोलिकुल और थोड़े से डिस्टेंस में हमने ले रखी है वो सिस्टम को हम कहते हैं डाइपोल। तो इस डाइपोल आपको वाटर मोलिकुल में मिल जाएगा H2O, H प्लस O माइनस टू। तो एक H और O के बीच में एक डाइपोल, दूसरा H और O के बीच में दूसरा डाइपोल होता है आपका। तो ऐसे ही मोलिकुलर स्ट्रक्चर में आपको डाइपोल्स मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डाइपोल के वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज है तो उन दोनों के वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड टोटल सिस्टम के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो जहाँ हम एक डाइपोल ले रहे हैं, अगर एक चार्ज को हम लेते हैं प्लस क्यू तो दूसरा होगा इक्वल एंड ऑपोजिट मीन्स माइनस क्यू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम इज सपोज 2L। तो हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं पी, डाइपोल मोमेंट का सिंबल है पी, एंड उसका मैग्नीट्यूड है क्यू इंटू 2L। क्यू इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल चार्ज, इंटू 2L इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और उसका यूनिट होगा क्यू इंटू 2L मीन्स कूलम मीटर। और हमारा डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसका तो मैग्नीट्यूड हमने देख लिया, तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन क्या होता है डाइपोल का, इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। जो दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वहाँ पे आपका माइनस टू प्लस चार्ज के तरफ डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो हम जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल निकाल रहे हैं, वहाँ पे दो केसेस होते हैं। एक तो होता है आपका एंड ऑन पोजीशन पे, दूसरा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो ये एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या होता है? एंड ऑन पोजीशन मतलब है जो दोनों चार्ज को एक लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी लाइन में किसी पॉइंट पे अगर आप निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, देन उसको हम कहते हैं एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पॉइंट कहते हैं। लेकिन अगर जो लाइन उन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रहा है उसके बाइसेक्टर लाइन के ऊपर अगर आप निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, देन हम उसे कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो ये दोनों केस होता है, आप अपनी किताब खोल के देख सकते हैं कि कैसे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने निकाला है। तो इसका वैल्यू आपका आता है एंड ऑन पोजीशन पे इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अगर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम निकाल रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो वो आता है आपका इक्वल टू पी बाय 4π एप्सिलॉन 0 आर क्यूब, बिल्कुल हाफ। एक्सियल पॉइंट पे आपका 2p डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आता है, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे आपका पी बाय 4π एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इट्स हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट और एंड ऑन पोजीशन। तो ये है उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन ड्यू टू ए डाइपोल। तो अब तो वक्त कम है तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि हमने पहले देखा कि चार्ज होता क्या, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और जहाँ जो दो ऑब्जेक्ट को आपका रबिंग कर रहे हैं उन दोनों में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होता है, और हमेशा ये चार्ज कहीं से प्रोड्यूस नहीं होता, ये ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है। चार्ज ना तो प्रोड्यूस हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं हम इसको। नेक्स्ट होता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि हर पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, दैट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। नेक्स्ट होता है आपका फोर्स, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, आप जो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल और द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. और इसका वैल्यू होता है एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. के का वैल्यू डिपेंड करता है मटेरियल मीडियम है या फ्री स्पेस है. तो फ्री स्पेस में 1/4πε0 और आपका मटेरियल मीडियम में 1/4πε. ये एप्सिलॉन को कहते हैं हम परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम. और के का वैल्यू है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन SI यूनिट. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये भी हमने देख लिया. इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज इन द फील्ड ऑफ अनदर सोर्स चार्ज. एक सोर्स चार्ज के अराउंड टेस्ट चार्ज जितना यूनिट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड या यहाँ तो हमने एक ही चार्ज या दो चार्ज के बीच में फोर्स को पहले मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट किया, बट हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं मोर देन टू चार्जेस के लिए थ्रू सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस. और इन सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज हम ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो कैलकुलेट करते हैं, फिर वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस लेते हैं. इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है और पूरे टोटल सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए कितना हो रहा है वो वेक्टर सम से निकालते हैं. लेकिन हमने देखा डायपोल के बारे में. डायपोल होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन वी कॉल दैट सिस्टम एज ए डायपोल. यू कैन एक्सपीरियंस डायपोल इन मोलिकुलर स्ट्रक्चर. और डायपोल के वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कैसे होता है उसका तो डेरिवेशन आपके किताब में है. पूरा डेरिवेशन यहाँ बोलने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उसका जो वैल्यू होता है एंड प्रोडक्ट होता है आपका इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ फॉर ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन एंड फॉर एंड ऑन पोजिशन 1/4πε0 2P/r³. तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल. तो ये था हमारा टोटल आज का डिस्कशन का समरी. और आपका एग्ज़ाम आ रहा है अप्रैल में, आप सब एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कर रहे होंगे. तो मैं ये बता दूं कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट पे जाके पढ़िए. खाली ऐसा नहीं कि पन्ना पलटना है और लिखते जाना है, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए क्योंकि आजकल एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज़्यादा सवाल आता है. और ताकि आप खाली किताब पढ़ने के बजाय आप ये कर सकते हैं कि 5 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं आपके पुराने उनको आप वर्कआउट कर लेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाता है कि सवाल कैसे आते हैं, कैसे उनको अटेंड करना होता है, कितना लिखना है एक सवाल के लिए. ऐसा ना हो कि आप 1 मार्क के लिए पूरा ऐसे बना रहे हैं या फिर 6 मार्क क्वेश्चन के लिए 2 लाइन लिख के छोड़ दे रहे हैं. तो आप देखिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या उन्होंने मांगा है, जितना मांगा गया है उतना ही जवाब दें. उससे ज़्यादा देने से भी आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल जाएंगे. तो इसलिए टू द पॉइंट आप पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, टू द पॉइंट जवाब देना है. और हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी कोई न्यूमेरिकल आप अटेंड कर रहे हैं तो उसको एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, जितने फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं सबके एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ला के उनको कैलकुलेट करें और लास्ट में यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज उसमें मार्क्स कट जाते हैं. तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करें. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.